الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انك لعلى خلق عظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. तो इस क्लास में हम आजकल तीन बहुत जेवर किताब में से अखलाक व आदात नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शमाइल का मौजू पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मकसद हमारा यानी नियत क्या कि जिक्र से ज़ात की मोहब्बत पैदा होती है, तो नबी अलैहिस्सलाम के शमाइल का तस्करा करेंगे। तो अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को पैदा फरमाएंगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने शुरू जो है वो नाम मुबारक व नसब शरीफ और पैदाइश और हयात मुबारका के मुख्तलिफ अदवार इसको पढ़ के किया था। फिर नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात, औलाद, मिजाज व आदात मुबारका, तो वो सारी तफसील जो है वो अब फिर उसके बाद हुदिया मुबारका और औसाफ तय्यबा। पर यही वाली हेडिंग जो है वो मुस्तकिल चल रही है, हुलिया मुबारक और औसाफ तय्यबा यानी नबी अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सिफतें, वस्फ, औसाफ। तो इनमें हम जो है वो पॉइंट नंबर 62 के ऊपर अब हैं, पेज नंबर 130 130 के ऊपर। तो उसमें हजरत ने ये पॉइंट लिखा कि मुस्लिम और अबू दाऊद रहिमहुमुल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल शुरू फरमाते तो फिर उसको हमेशा किया करते थे। ठीक है, कोई अमल शुरू फरमाते, ठीक है, यानी एक होता है कभी आपने कोई अमल कर लिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक दफा कोई अमल कर लिया तो अब बस उसको हमेशा करना है। ठीक है, तो इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो हर अमल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत नहीं है। ठीक है, हर अमल जो है ना वो सुन्नत नहीं है। कभी नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो यानी एज एन एक्सेप्शन भी कोई अमल किया, जैसे कि फिका की किताबों के अंदर उमूमी तौर पर मिसाल दी जाती है कि जब नबी अलैहिस्सलाम जो है वो एक कौम का गुजर जो है वो एक कौम के कूड़े पर हुआ, कूड़ा कचरा, ठीक है, डंप यार्ड, तो वहाँ नबी अलैहिस्सलाम को यानी पेशाब करने की जरूरत महसूस हुई, तो आप ने खड़े होकर के वहां पे पेशाब किया, तो बैठ करके नहीं किया। ठीक है, तो अब ये जो अमल किया नबी अलैहिस्सलाम ने ये एक्सेप्शन था, ये इस्तेसनाई सूरत थी। ठीक है, जो कि वहां के कूड़े करकट की वजह से ही यानी ऐसी जगह थी कि जहां पर के बैठ करके जो है वो करना करके कोई सूरत नहीं बन रही थी। तो अब जो ये अमल किया ना, अब ऐसा नहीं था कि ये अमल कर लिया तो अब जो है वो बस यही अमल करना है, अब हर रोज जो है जब भी जरूरत पेश आ रही है फरागत की तो ऐसे ही खड़े होकर के जो है वो फारिग हो रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो इसको जो है नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी आदत नहीं बनाया, सुन्नत नहीं बनाया। ठीक है, तो इस बात को भी जो है जो पॉइंट यहाँ पर है इसको मामूल किया जाएगा कि नेकी के जो काम नबी अलैहिस्सलाम कभी इब्तिदा कर दिया करते थे ना, जैसे किसी की मदद करने की इब्तिदा कर दिए, मैं मिसाल के तौर पर किसी खानदान की कफालत इंसान ने जो है वो अपने जिम्मे ले ली। ठीक है, तो अब वो कफालत जो है ना वो फिर मुस्तकिल यानी मुस्तकिल मिजाजी के साथ उसकी कफालत करते रहेंगे। ठीक है, और इस तरह की और भी बहुत सारी सूरतें मिसालें जो है वो हदीस की किताबों से मिल जाती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम का बाकायदा ये यानी कौल मुबारक भी हदीस की किताबों के अंदर मशहूर है, इसी से रिलेटेड कि आपसे फरमाया अहब्बुल अमाली इलल्लाही अदवमुहा फइन कल्ला। ठीक है, आपसे उसने फरमाया कि नबी के अल्लाह ताला के नज़दीक जो सबसे ज्यादा महबूब आमाल होते हैं ना, सबसे ज्यादा पसंदीदा आमाल होते हैं, वो होते हैं कि जो के मुस्तकिल मिजाजी के साथ किए जाएं, ठीक है, दवाम के साथ किए जाएं, अगरचे के वो छोटे हों, ठीक है, व इन कल्ला, अगरचे के वो कलील हों, छोटे हों, ठीक है। तो हमारे दीन का एक मिजाज है, ठीक है, मिजाज क्या है कि कसरत की डिमांड नहीं है, कसरत की डिमांड नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी जिसको कहते हैं ना, क्वांटिटी की डिमांड नहीं है बल्कि क्वालिटी की डिमांड है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे मशायख जो है वो सूरह मुल्क की वो जो आयत भी पेश करते हैं, तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु अला कुल्ले शयइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन, अल्लाह ताला ने मौत और हयात को किस लिए पैदा किया, ताकि ये देख सकें, ये आजमा सकें कि तुम में से कौन अच्छे आमाल करता है। अक्सरु अमला कभी बिल्कुल वही वजन बनता है, अक्सर कभी वही वजन बनता है जो कि अहसन का वजन बनता है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला ने अहसन का लफ्ज इस्तेमाल किया, अक्सर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो कसरत जो है वो नहीं है, उसकी जो है वो तवक्को या उसकी डिमांड नहीं। हाँ, अगर कोई कसरत से अमल कर सकता है, उसके हालात उसको इजाजत देते हैं दूसरी चीजों को जो ज्यादा अहम थी उनको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, ठीक है, अगर उसको अल्लाह ताला ऐसे हालात देते हैं कि वो कसरत से अमल कर सकता है तो जरूर करे, ठीक है ना। लेकिन इस कसरत के अमाल की वजह से जो है ना, वो अपनी दीगर जिम्मेदारियों को या फराइज को या जो है वो ताल्लुकात को खराब ना करे, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया और अपने अमल से साबित भी कर दिया कि अहब्बुल आमाल इलल्लाह अदवमुहा व इन कल्ला, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने की कोशिश करनी है, हमें अपने नफ्स की मोहब्बत, अपने नफ्स को खुश नहीं करना कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं कसरत से अमाल करूं इस वजह से मैं कसरत से अमाल करूंगा, नहीं, बल्कि क्या फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल्लाही, अल्लाह के लिए जो ज्यादा पसंदीदा अमल है, तो मैंने जो अमल करना है वो अल्लाह के लिए जो पसंदीदा है वो करना है, ये नहीं कि जो मेरे लिए पसंदीदा है वो मुझे करना है, नहीं, अल्लाह की मोहब्बत मकसूद है, अल्लाह की रजा मकसूद है, तो अल्लाह के लिए जो पसंदीदा है वही करना है ना, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम का टारगेट, आपसम का फोकस, आपसम की वजह अमल, अब ये अल्लाह की मोहब्बत थी, ठीक है। तो इस वजह से और किसने बताया कि अल्लाह की मोहब्बत किस चीज में, अल्लाह ताला ने खुद बताया, अल्लाह ताला ने खुद बताया वास्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम के, नबी अलैहिस्सलाम को बता दिया कि भी मेरे लिए ये चीज़ ज्यादा महबूब है, ठीक है। तो इस तरह से पता चल गया, खबर से पता चल गया, अल्लाह ताला ने खबर दे दी, ठीक है। सिर्फ अकल इंसान की काफी नहीं होती कि अकल से सोचे कि अच्छा मेरे परवरदिगार को क्या चीज़ पसंद होगी, तो मेरी अकल ये कहती है कि ये पसंद होगी तो मैं वो करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। जब खबर मौजूद है तो अकल की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, अगर खबर किसी बात की मौजूद नहीं है तो फिर अकल इस्तेमाल करके जो जो खबरें मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर इंसान कयास कर सकता है, ठीक है, कि क्या चीज जो है वो अल्लाह ताला को पसंद होगी, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ते हैं 63, कि इब्ने अबी दुनिया रहिमहुल्लाह ताला ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन से रिवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होने की हालत में गुस्सा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते, और जब बैठने की हालत में गुस्सा आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते, ठीक है। क्या मतलब कि गुस्से का एक इलाज नबी अलैहि सलाम ने अपने अमल से बता दिया कि जिस हैयत के अंदर, जिस फिजिकल क्या कहते हैं आप, स्टेटस के अंदर मौजूद है ना, उसको चेंज कर लेने से, उसको तब्दील कर लेने से गुस्से को काबू करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो खड़े हुए थे तो बैठ जाते, बैठ जाते, बैठे हुए थे तो लेट जाते, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि हैयत तब्दील कर लेना, ये इससे मशायख ने फिर अखज किया, कि गुस्से को काबू करने का एक तरीका ये। और एक और भी मशायख ने इस वाली सुन्नत को देख करके कि जमीन के करीब हो जाते, पस्ती के करीब, जमीन पस्त है ठीक है, और गुस्सा जो है ना ये बुलंदी की अलामत है। ये बुलंद, जब कोई इंसान के अंदर कुछ बुलंदी वाली कैफियत सी पैदा होती है ना, तब उसको गुस्सा आता है। इसी वजह से गुस्सा अगरचे के बजाते खुद एक बीमारी है, बजाते खुद एक बीमारी है कि विदाउट एनी रीजन या विदाउट एनी जो है ना वो क्या कहते हैं तकब, यानी ये एक ऐसी चीज है जो कि बस अपने मिजाज के खिलाफ कोई चीज हो जाए तो इंसान को गुस्सा आ जाता है ठीक है। और ये हर एक के ऊपर आता है, गुस्सा एक रूहानी बीमारी है ठीक है, ये एक डिजीज है ठीक है। तो ये एक ऐसी डिजीज है कि जो कि ना फिर ये तो देखती है कि मिजाज के मुताबिक है कोई काम या मिजाज के मुताबिक नहीं है। अगर मिजाज के मुताबिक है तो गुस्सा नहीं आएगा, ये रूहानी बीमारी ट्रिगर नहीं होगी, लेकिन अगर मिजाज के खिलाफ है तो ये ट्रिगर हो जाएगी ठीक है ना। लेकिन ये रूहानी बीमारी ये नहीं देखती कि ये मिजाज के खिलाफ जो अमल हुआ है ना ये किससे हुआ है ठीक है। ये अगर किसी बच्चे से होगा तो बच्चे के ऊपर गुस्सा आएगा, अगर बड़े से हुआ तो बड़े के ऊपर गुस्सा आएगा, मर्द से हुआ तो मर्द के ऊपर गुस्सा आएगा, औरत से हुआ तो औरत के ऊपर गुस्सा आएगा ठीक है ना। दोस्त से हुआ, अच्छा दुश्मन से हुआ तो दुश्मन पे गुस्सा आएगा, दोस्त से हुआ तो दोस्त पे गुस्सा आएगा। ये ऐसी रूहानी बीमारी है ठीक है ना। तो ये रिगार्डलेस के किससे मिजाज के खिलाफ अमल सादर हुआ है ये आएगा ठीक है ना। और ये जब जब जिसके अंदर ये शिद्दत की हालत में मौजूद होती है तो ऐसा होता है कि जैसे कि कानों से धुआं निकलना शुरू हो जाए ठीक है, हत्ता के आंखों के आगे अंधेरा भी छा जाता है, यानी एक लम्हे के लिए जो है ना वो जैसे कि आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। ये इतनी शदीद बीमारी होती है, आपके आसाब जो होते हैं वो शल हो जाते हैं गुस्से की शिद्दत के अंदर ठीक है। लेकिन एक दूसरा भी गुस्सा होता है, वो गुस्सा क्या होता है वो चले आप बता रहे हैं, जब तक ये आजिज कुछ छोटा सा काम करके आता है। गुस्सा एक और भी वजह से आता है, एक और किस्म का भी होता है ठीक है, वो क्या होता है देखते हैं किसको कितना याद है। गुस्सा दीन की वजह से आता है। अच्छा अभी तो खैर वैसे हम जरा मनफी अंदाज में बात कर रहे हैं इसके लिए ठीक है। तो दीन की खातिर जो गुस्सा होता है ना जो कि दीनी गैरत कहलाती है, तो बड़ी अच्छी चीज है और ये तो लाजमी है ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इस वजह से ये वाली बात कर नहीं रहे। तो जी इन्होंने जवाब दिया डायरेक्ट मैसेज में कि कंट्रोल्ड गुस्सा ठीक है, ये कंट्रोल्ड गुस्सा क्या होता है ये भी आप ही बता दें, जो देखकर आता है कि किस पर निकालना है। हाँ ये तो आपने गुस्से की किस्म बता दी ठीक है, लेकिन ये वाला जो गुस्सा होता है ना इसकी वजह क्या बनती है, ये हर एक के ऊपर नहीं आता, ये बड़ा कंट्रोल्ड होता है ठीक है। जो पीछे आपको गुस्से की किस्म बताई थी ना जो कि असल रूहानी बीमारी होती है, वो अनकंट्रोल्ड होता है, वो देख के नहीं आता किसके ऊपर आना है ठीक है ना। तो ये जो कंट्रोल गुस्सा होता है ना ये असल में रूहानी बीमारी नहीं होती, ये रूहानी बीमारी नहीं होती बिकॉज ये कंट्रोल्ड होता है। और रूहानी बीमारी जो होती है ना वो ऐसी चीज नहीं होती कि जिसके ऊपर आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकें, उसका तो आपको लॉन्ग टर्म इलाज करना पड़ता है ठीक है, तब जा करके वो ट्यूमर वो गुस्सा खत्म होता है। तो ये वाला जो गुस्सा होता है ना जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, ये यानी आपकी मर्जी से आता है ठीक है ना, जो तरबात के बाद आता है, तरबात के बाद आता है, तरबियत कहना चाह रही है शायद, नहीं ये जो गुस्सा होता है ना ये असल में इसका कॉज जो होता है ना वो तकब्बुर होता है, असल में इसका कॉज जो होता है वो जी तकब्बुर होता है ठीक है। तो जिसको आप छोटा समझते हैं ना ठीक है ना, जिसको आप कमतर समझते हैं ना, सिर्फ उस पर गुस्सा आता है ठीक है ना, सिर्फ उसके ऊपर इंसान गुस्सा निकालता है। और जैसे ही आपके सामने कोई दूसरा बंदा आ गया जिसको आप छोटा नहीं समझते बल्कि आप अपने से बड़ा समझते हैं, ये गुस्सा खत्म हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। ठीक है ना, क्यों क्यों रफू चक्कर हो जाता है? क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है ना, ये आपके कंट्रोल में। जो अनकंट्रोल्ड गुस्सा था ना, वो तो बड़ी देर तक नहीं जाता। अब कोई आपका दुश्मन के ऊपर गुस्सा आ रहा है, तो अगर दोस्त साहब जो है वो चलते हुए आ गए ना, तो ऐसे नहीं होगा कि दोस्त को देखते ही गुस्सा खत्म हो गया। नहीं, ये तो अनकंट्रोल्ड है, ये कोई थोड़ी खत्म होता है इतनी आसानी से। ठीक है, ये तो रहेगा आपके ऊपर क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड गुस्सा है, और यही असल रूहानी बीमारी वाला गुस्सा है। दूसरा गुस्सा वो असल में तकब्बुर वाला गुस्सा है, उसकी रूहानी बीमारी क्या है? तकब्बुर, वो है उसकी जड़। ठीक है, और ये कंट्रोल्ड होता है, ये हर एक के ऊपर नहीं आ रहा होता, ये सिर्फ उसके ऊपर आ रहा होता है कि जिसको क्या आप अपने से कमतर और जलील समझ रहे होते हैं, या अपने से कम इल्म समझ रहे होते हैं, या अपने से बेवकूफ समझ रहे होते हैं। ठीक है, या अपने से जो है वो कमजोर समझ रहे होते हैं, या गरीब समझ रहे होते हैं, उसके ऊपर ये गुस्सा आता है। ठीक है, तो तकब्बुर की जो रूहानी बीमारी है, वो गुस्से की रूहानी बीमारी से भी ज्यादा बड़ी रूहानी बीमारी है। ठीक है, तो ये वाला गुस्सा पहले वाले गुस्से से ज्यादा बदतर गुस्सा होता है। बहरहाल, गुस्सा चाहे इस तरह से हो चाहे उस तरह से हो, ये इंसान के लिए शदीद नुकसानदेह होता है, और इसका जो है वो इलाज करना होता है। अब ये इलाज जो है वो दो तरीकों का इलाज होता है। एक तो ये होता है लॉन्ग टर्म इलाज। ठीक है, यानी जिससे कि इसकी जो है ना वो बुनियाद ही कमजोर हो जाए। ठीक है, बल्कि इलाज का मकसद ये होता है कि ये जो अनकंट्रोल्ड गुस्सा है ना, ये शरीयत की बाउंड्री के अंदर आ जाए, कि सिर्फ शरी रीजन की वजह से आपको गुस्सा आ रहा हो। ठीक है, दीन वाला जो गुस्सा आपने आपने ऊपर लिखा था किसी ने, ठीक है, दीन की वजह से गुस्सा है। ठीक है, जहां दीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, जहां पे नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी या नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो शान में गुस्ताखी हो रही है, वहां पर गुस्सा आए, लाजमी आए। अगर नहीं आ रहा तो समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग विद यू, क्यों नहीं आ रहा आपको गुस्सा? ठीक है, लेकिन जहां पर नफ्स यानी नफ्स का मसला हो, तो वहां पर इंसान को गुस्सा नहीं आए, तो ये मकसूद है। ठीक है, अपने नफ्स की खातिर गुस्सा ना आए, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के दीन की वजह से गुस्सा आए। तो रूहानी बीमारी का इलाज करके हमें उसको कहाँ पहुंचाना है? बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर देना, कि बिल्कुल बेहिस हो जाए, बिल्कुल बेगैरत हो जाए, बिल्कुल दयूस हो जाए। ठीक है, कि किसी बात पे भी गुस्सा नहीं आ रहा, नहीं, ये नहीं करना है। ठीक है, और ये इंसान वैसे कर भी नहीं सकता, लेकिन ये हमारा मकसूद है। तो इसके लिए जो है वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करना, ठीक है, और जो है ना वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना, अपने माहौल को चेंज करना, ठीक है, जितना कर सकते हैं। कोई इंसान जो है वो एक हद तक माहौल को चेंज कर सकता है, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, और उससे ज्यादा वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जितना कर सकता है उतना तो करे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर कोई औरत है घर के अंदर रहती है, या कोई मर्द है जो कि किसी दफ्तर में काम करता है, तो अब वो नौकरी यानी दफ्तर के लोगों की वजह से उसको गुस्सा आता है, दफ्तर के कामकाज की वजह से गुस्सा आता है, तो भाई वो इस गुस्से की वजह से यानी नौकरी नहीं छोड़ सकता। ठीक है ना, उसके लिए दूसरी जॉब अवेलेबल नहीं है, तो वो नौकरी नहीं छोड़ सकता, तो वो इस माहौल को चेंज नहीं कर सकता। उसी तरीके से एक औरत है घर के अंदर जो है वो सास ससुर के साथ रहती है, और पता नहीं और किस किस के साथ रहती है, तो वो सारे लोग जो है वो उसका गुस्सा का सबब बन रहे होते हैं। तो अब ये औरत जो है वो अपने गुस्से के इलाज के लिए घर को छोड़ के नहीं जा सकती। ठीक है ना, अपने शौहर से तलाक लेकर के जो है वो किसी और जगह जाके शादी नहीं कर सकती कि भाई मेरा गुस्से का मसला था तो मैंने तलाक ले ली, खुला ले ली। ठीक है ना, नहीं, ये वाला आप माहौल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है वो चाहे दफ्तर में बैठे हुए हो, चाहे जो है ना आप घर में बैठी हुई हो, आप जो है वो कोई ऐसा प्रोग्राम जो है वो देख रही होती हैं, कोई ऐसी चीज जो है वो सुन रही होती हैं, कि जिसको सुन सुन करके या देख देख करके जो है ना आपको गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है ना, टीवी का प्रोग्राम है, कोई ऐसी जो है वो खबरें हैं इस किस्म की, ठीक है, जिनको देख करके आपको नफसानी गुस्सा, ये नहीं कि दीन वाला गुस्सा, नहीं, नफसानी गुस्सा आता है आपको, तो भाई अब ये प्रोग्राम जो है वो इसको तो आप बंद कर सकती हैं ना। ठीक है ना, इस प्रोग्राम को देखना तो आप छोड़ सकती हैं ना, या ये भी ये यानी ये भी तो एक माहौल है ना जो आपने अपने गिर्द खुद बनाया हुआ है,
इस माहौल से निकलना आपके लिए नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। ठीक है, उसी तरीके से आप किसी जगह जाती हैं, ठीक है ना, वो अपने शुगल के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, और उस जगह जा करके वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं कि जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, तो भाई आप वहां जाना बंद कर सकती हैं, ना जाएं आप वहां पर। ठीक है, तो ये वो माहौल है कि जिसको इंसान खुद चेंज कर सकता है, तो ये तो चेंज करे ना। जो नहीं कर सकता उसके ऊपर ढंडोरा पीटते रहना कि नहीं मैं कैसे अपना माहौल चेंज करूं, मैं कैसे अपना माहौल चेंज करूं। ठीक है ना भाई, जो नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, अल्लाह को ज्यादा पता है आपसे कि आप नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो भी अल्लाह को पता है कि देखो ये कर सकती है माहौल, ये वाला माहौल चेंज कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही, तो अल्लाह ताला फिर क्यों मदद करेंगे। ठीक है ना, असल में तो गुस्से का इलाज अल्लाह की मदद से होना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला मदद ही नहीं फरमाएंगे फिर ऐसे शख्स की जो कि वो नहीं करता जो कि वो कर सकता है। ठीक है, तो बाकी गुस्से के मुजर्रात वगैरह के ऊपर तो पहले कई दफा बात हो चुकी है, और मिसाली बीवी के भी जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं आजकल निकास में मजीद जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो उसके अंदर भी कितना नुकसान होता है गुस्से की वजह से, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी को कोई सवाल पूछना हो तो वो कर। अच्छा, ये तो सॉरी एक बात बता दी थी, लॉन्ग टर्म इलाज ना, कसरत जिक्र और माहौल का चेंज करना, और जो शॉर्ट टर्म इलाज होता है, शॉर्ट टर्म इलाज का मतलब क्या कि अभी जो गुस्सा आया हुआ है ना, ये बस किसी तरीके से काबू में आ जाए, फॉर द टाइम बीइंग काबू में आ जाए। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म इलाज में से एक तो यही है जो कि सुन्नत में है कि भाई आप खड़े में तो बैठ जाएं, बैठे में तो लेट जाएं। ठीक है ना, फिर उसके बाद जगह चेंज कर लें, कमरे ही छोड़ के चले जाएं, ठीक है ना, दूसरे कमरे में चले जाएं, ये भी एक शॉर्ट टर्म इलाज है। और एक और के वुजू कर लें, ठीक है ना, वुजू करने से भी पानी लगने से जो है ना ये गुस्से की आग जो है वो ठंडी होती है, या ठंडा पानी पी लें, ये ठंडा पानी पीना भी जो है ना ये भी अंदर एक गुस्से की जो आग लगी हुई है उसको कंट्रोल करने में मदद देती है। और सबसे बेहतरीन तो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर, ठीक है ना, ये जो दुरूद शरीफ है ना ये एक ऐसी ठंडी चीज है, ऐसी मुलायम और ऐसी खूबसूरत चीज है कि इससे जो है ना वो उस वक्त जो है ना वो आपका गुस्सा काबू में आ सकता है। ठीक है ना, लेकिन मसला ये है कि जो जिसके अंदर गुस्से की रूहानी बीमारी शदीद हालत में मौजूद होती है ना, उसको जब गुस्सा आता है ना तो उस वक्त तो उसको होश ही कोई नहीं होता कि वो ये सारे अमल करे। ठीक है ना, ठंडा पानी पिए, फलाना करे, ये करे, वो करे, या दुरूद शरीफ पढ़े, नहीं, उसको तो उस वक्त दिमाग उसका ऐसा भिन्न हुआ हुआ होता है, हमारे यहाँ कहते हैं दिमाग भिन्न हुआ हुआ है, तो उस वक्त थोड़ी सारी बातें समझ में आ रही होती हैं। ठीक है ना, तो इस वजह से ये जो शॉर्ट टर्म इलाज जो है ना ये दरअसल उन लोगों के लिए ज्यादा है कि जिन्होंने अपनी रूहानी बीमारी को कंट्रोल में किया हुआ है, लेकिन किसी तबी तकाजे की वजह से, किसी किसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से उनको गुस्सा आ गया, तो जब आ गया तो चूंकि इलाज तो हुआ हुआ है तो अब जो है ना वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते। अब वो लोग जो हैं वो इस तरह के शॉर्ट टर्म इलाज करके गुस्से को काबू कर सकते हैं, जैसे नबी अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम के अंदर रूहानी बीमारी तो मौजूद नहीं थी ना। ठीक है ना, अच्छा यहाँ जिस गुस्से की बात हो रही है ये शरी गुस्सा भी नहीं था कि शरी गुस्सा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और नबी अलैहिस्सलाम उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं। तो यहाँ कौन से वाले गुस्से की बात हो रही है, यहाँ पर जो है वो ऐसा गुस्सा जो कि पसंदीदा नहीं है, तो उस गुस्से को रोकने के लिए नबी अलैहिस्सलाम अपनी हैयत को चेंज कर रहे। ठीक है, तो ये कौन शख्स कर सकता है जिसने कि अपनी रूहानी बीमारी का इलाज पहले से किया हुआ हो, अब वो ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के अंदर काबू में रहता है और अपने कंडीशन को चेंज करके कोई ऐसी अमल करके उस गुस्से को काबू कर लेता है। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि 64 अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुर्दे के दफन से फारिग होते थे तो कब्र पर कुछ देर ठहरते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी ठहर जाते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अपने मुर्दा भाई के लिए अल्लाह तआला से मगफिरत तलब करो और उसके लिए साबित कदम रहने की दुआ करो, इसलिए कि इस वक्त उससे सवाल किया जाता है। ठीक है, यानी जब कब्र के अंदर डाला जाता है ना तो उसके बाद जो है वो सवाल जवाब का प्रोसेस शुरू होता है, जैसे कि ब्रैकेट्स में लिखा कि यानी मुनकर और नकीर के सवाल का वक्त है।
इसलिए उसके जवाब में साबित कदम रहने की दुआ करो ताकि मुर्दे को परेशानी ना हो। ठीक है, तो कब्र पर रहना, तो बाकी इसकी सुन्नतें किताबों के अंदर तफसील से लिखी हुई भी हैं कि जैसे कि जो सिरहाना होता है वहां पे खड़े होकर नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सूरह बकरा की इब्तदाई आयात, ठीक है, और पैताना, पैतानी कहते हैं ना पैर की तरफ, तो पैर की तरफ खड़े होकर के सूरह बकरा की जो इंतहाई आयात है उनकी तिलावत किया करते थे। ठीक है, और दुआ मांगना, अच्छा दुआ जो है वो इज्तिमाई दुआ जो है सुन्नत से साबित नहीं है बल्कि इनफरादी तौर पर, ठीक है ना, वहां पे खड़े होकर बहुत सारे लोग जो है वो हाथ उठा करके जो है बुलंद आवाज में इज्तिमाई दुआ करना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं है कब्रिस्तान में खड़े होकर के इस तरह से, ये सुन्नत से साबित नहीं। ठीक है, बाकी ये कि कोई करना चाहे तो भाई बगैर सुन्नत के आप कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको देख करके लोग उसको सुन्नत समझना शुरू कर दें, ठीक है, तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो हराम तो नहीं है दुआ करना, ठीक है, लेकिन सुन्नत तो नहीं है ना, तो आप ये बिदअत ना बन जाए कहीं। बहरहाल, तो एक तो ये हो गया कि इस तरह की सुन्नतें जो है वो कब्रिस्तान में जाकर किस तरीके से जो है वो मिट्टी डालना शुरू करना है, मिट्टी डालते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या पढ़ा करते थे, और ये सारी चीजें फिर उसमें तफसील हैं, तो जो मर्द वहां पर जाते हैं तो वो उसकी वक्ता फवक्ता अदा करते रहे, तो इन सुन्नतों पर अमल की तौफीक बन जाती है। और इसके अलावा दूसरा जो जो एक सॉर्ट ऑफ समझ लें पोशीदा इसके अंदर हमें कोई नुक्ता मिल सकता है, वो ये समझ में आता है कि देखें नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अपने मुर्दे के लिए अल्लाह ताला से मगफरत तलब करो इसलिए कि इस वक्त उससे सवाल किया जाता है। क्या मतलब कि जिस वक्त किसी के ऊपर गुजर रही है ना उस वक्त उसकी उस तकलीफ के लिए सवाल करना ये अहम है, ठीक है ना, यानी पहले आपने आपने दुआ कर ली या आपने जो है वो वक्त गुजरने के बाद दुआ कर ली, तो भाई बाद में भी कर सकते हैं पहले भी कर सकते हैं, लेकिन देखें मौके के ऊपर दुआ करना, वक्त पर दुआ करना, ठीक है, तो ये वक्त जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइम पे आप कोई काम कर रहे हैं, वरना लेट काम करने से काम तो चले शायद हो भी जाए लेकिन वक्त तो गुजर गया ना, ठीक है, या उसके ऊपर तो गुजर गई जो गुजरनी थी, तो इसी वजह से जो है ना जब किसी का इंतकाल होता है ना तो इंतकाल होने के बाद आपको पता है कि फिर हमारे यहाँ क्या होता है, ठीक है ना, कहीं पे रोना धोना पीटना हो रहा होता है, ठीक है, और कहीं पे जो है ना वो बस खामोश बैठे हुए हैं, है ना, मोहल्ले वाले आ गए और जो है वो दोस्त रिश्तेदार आ गए और फिर जो है ना वो यानी या तो क्या हुआ था और कैसे हुआ था और ये उसने क्या कहा था और फिर ऐसे हुआ, फिर बस यानी हर किस्म की बातें हो रही हैं या कोई बात नहीं हो रही, अब तो खैर जाहिर है अब तो बात करने की जरूरत ही नहीं, सबके पास सेलफोन होता है, तो चाहे कोई मर गया कोई जी गया तो वो सेलफोन है ना बस आप उसके अंदर लगे हुए, ठीक है ना, सारी दुनिया की आप जो है वो खबरें देख रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, मर गया सो मर गया टर गया, ठीक है, तो वो टाइम था कि भाई अब तो इसका हिसाब किताब शुरू हो गया ना, अब तो ये जो है वो इस दुनिया से आलम बरजख में पहुंच गया, नाउ ही इज इन नीड और शी इज इन नीड, ठीक है ना, और उसको अब हमारे अमाल की जरूरत है, उसका नाम है अमाल बंद हो चुका, ठीक है ना, जो पीछे रह गए हैं वो अमल करके उसको भेजेंगे, उसकी औलाद हो चाहे उसके दोस्त अहबाब हो चाहे जो भी हो, इसारे सवाब का टाइम शुरू हो गया, ठीक है ना, तो ये तो बड़ा क्रिटिकल टाइम है कि जाया ना करें, ठीक है ना, कुछ करना, उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें, उसके लिए जो है वो तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें, उसके लिए जो है वो कुरान शरीफ की तिलावत करते रहें, कुछ ना कुछ याद है, अगर बैठ करके जो है वो वजू के साथ नहीं भी पढ़ सकते, ठीक है, तो जो याद है वो तो पढ़ सकते हैं ना, अगर हैज नफास की हालत में नहीं है औरतें, ठीक है ना, तो तिलावत तो कर सकती हैं, बगैर वजू के भी तिलावत की जा सकती है, ठीक है ना, हैज नफास में तिलावत नहीं की जा सकती लेकिन वैसे तो करी जा सकती है ना तहारत की हालत में, तो पढ़ना शुरू कर दें और उसके जो है ना वो इसारे सवाब की नीयत से पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है ना, तो भाई वो तो अब उसका तो मामला शुरू हो चुका कब्र का, और जाहिर है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ना तो वैसे वैसे फिर हमारा निस्यान गालिब आता जाएगा, और जब निस्यान गालिब आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप दूसरे कामों में लग जाएंगे, फिर उसके बाद उसकी याद नहीं आएगी, ठीक है ना, तो याद का वक्त तो यही है जब वो मरा है, जब वो इस दुनिया से गया है ना, इसी वक्त वो याद भी है, ठीक है ना, तो ये मौका हम जाया कर देते हैं, ये जो असल मौका था जहां उसको जरूरत भी है,
और जहां पे हमारे लिए मुमकिन भी है कि हम उसके लिए कुछ कर सकें, तो वो मौका जो है ना वो फजूलियात के अंदर खत्म हो गया या उल्टी सीधी लवाजमात के अंदर खत्म हो गया। तो फिर उसके बाद टाइम गुजर गया, अब जो है वो उसके ऊपर से जो है ना वो इमीडिएट जो मर रब्बोक और पादीनों को वाले जो सवाल जवाब का भी सिलसिला खत्म हो गया, और जो है ना वो हमारी ही फिर याददाश्त में से वो मिटना शुरू हो गया। तो अब आप कभी कभार कर रहे हैं ये सारे सवाब, तो बड़ी अच्छी बात है कर रहे हैं, लेकिन अब तो उतना नहीं कर सकते जितना मौके पे कर सकते थे। ठीक है, तो ऐसे मौके के ऊपर थोड़ा सा हमें उस बंदे का भी लिहाज रखना चाहिए कि भाई वो जरूरतमंद है इस वक्त, ठीक है ना, उस वक्त जरूरतमंद है, और उस और हम ही उसकी जरूरत को इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है ना एक और भी कि भाई एक और भी अहम तरीन बात हम जिंदों के लिए, अभी तो हम जिंदा है ना माशाल्लाह से, सारे के सारे जिंदा हैं, ठीक है, तो ये जो वक्त आएगा ना ये सबके ऊपर आना है ना, कोई ऐसा नहीं है जो कि इससे एग्जेम्प्ट हो, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, तो सबके ऊपर आना है ना। तो भाई अगर हमारे मिलने जुलने वाले, हमारे आसपास के लोग जिक्र वाले होंगे, कुरान वाले होंगे, नेकी वाले होंगे, तो हमारे मरने के वक्त उनको इस तरह की बातें याद रहेंगी, ठीक है ना, वो कुरान शरीफ पढ़ लेंगे हमारे ऊपर, हमारे लिए ये सारे सवाब कर देंगे, जिक्र कर लेंगे हमारे लिए ये सारे सवाब कर देंगे, दुआ कर लेंगे, किसी अल्लाह के नेक बंदे को बुला लेंगे, उनके साथ बैठ करके कोई जो है वो नेकी की बात हो जाएगी, फिर उसके बाद इज्तमाही दुआ हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने इस दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाया, ठीक है, ऐसे लोग हमारे गिर्द इकट्ठे नहीं हुए, या हम ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना हमने नहीं रखा, तो मरने के बाद कहाँ से आ जाएंगे ये सारे के सारे लोग, है ना, उस टाइम पे फिर ऐसे लोग तो नहीं आएंगे ना, उस टाइम पे फिर दुनियादार लोग जिनको हमने इस दुनिया में दोस्त बना के रखा था, है ना, फिर उस वक्त भी वैसे ही लोग जो है वो हमारे जनाजे के अंदर आकर के या हमारे जो है वो ताजियत में आकर के बैठे हुए होंगे, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, या जिनको पढ़ना आता है लेकिन पढ़ने की तौफीक नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ये तो तैयारी दुनिया में करनी थी ना, जिंदगी के वक्त करनी थी ना, कि नेकों के साथ ताल्लुक बनाओ तो मरने के बाद उनका ताल्लुक काम आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से माशाल्लाह आप लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की क्लास ले रहे हैं और ये बातें सुन रहे हैं, तो आपके ऊपर तो इतना ही अप्लाई नहीं होता क्योंकि आपने तो माशाल्लाह ताल्लुक बनाया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट को जो है वो आप अपने ऐसे चाहने वालों के, अपने ऐसे रिश्तेदारों के सामने रख सकती हैं ना कि जिन्होंने ताल्लुक नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि मौत से तो वो इनकार नहीं कर सकते ना, ठीक है, चाहे किसी चीज से इनकार करें, पर्दे से इनकार कर दें या किसी और अमल से इनकार कर दें, लेकिन मौत से तो इनकार कोई भी नहीं कर सकता ना। ठीक है, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 65। तिर्मिजी रहमहुल्लाह ताला ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत किया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्ता पहनते तो दाएं तरफ से शुरू फरमाते थे, यानी पहले दायां हाथ इसमें दाखिल फरमाते थे, ठीक है, तो अच्छी चीजें नबी अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि पाकीजगी वाली बात जो है ना, या अच्छी बात जो है वो दाएं तरफ से राइट तरफ से शुरू करें, और जो जो नापाकी वाली चीजें होती हैं वो बाएं हाथ से या बाएं तरफ से, ठीक है। तो कपड़ा पहनना यानी अपने सतर को छुपाना, ठीक है ना, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत से अपनी यानी जीनत इख्तियार करना, ये सब अच्छा काम है, ठीक है, तो अच्छा काम राइट साइड से शुरू करना, और कपड़ा उतारना यानी अपने सतर को एक्सपोज करना, बेशक आप थोड़ी देर में खुद ही कपड़ा दोबारा पहन लेंगे, लेकिन एक लम्हे के लिए तो सतर को एक्सपोज कर रहे हैं ना, तो ये जो काम है ये नेगेटिव में आएगा। तो नबी अलैहिस्सलाम उतारते बाएं पैर से, बाएं हाथ से, ठीक है, यानी कॉन्शियसनेस की आप इंतहा देखें, अवेयरनेस की, है ना, तवज्जो की, कैसा कैसा एक एक अमल के अंदर फोकस, ठीक है, यानी बेध्यानी में, ये वाले काम तो ऐसे होते हैं जो हम बेध्यानी में करते हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम का ध्यान देखें, ठीक है, कि राइट फुट से अंदर दाखिल हो रहे हैं, मस्जिद के घर के अंदर, घर से बाहर जो है वो सीधे पैर से निकल रहे हैं, बाथरूम के अंदर जो है वो यानी जो नजासत वाली जगह है वहां बाएं पैर से दाखिल हो रहे हैं, कपड़ा पहनते हुए राइट साइड से, खाना खाते हुए खाना जो है वो भी राइट साइड से, राइट हैंड से खाना, ठीक है। तो इसमें एक तो ये बात जो आपको पहले से पता थी कि दाएं हाथ से और बाएं हाथ से क्या करना होता है, लेकिन अवेयरनेस और ध्यान, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, इसके ऊपर कभी शायद हमने पहले गौर ना किया हो, ठीक है, या किया होगा तो हम भूल गए। सही। अच्छा, क्या इन्होंने एक सवाल पूछा है पिछले वाले पॉइंट से रिलेटेड, शायद कि सास झूठ बोल रही है, बोल भी नहीं सकते कि आप झूठ बोल रही हैं, गुस्सा भी आ रहा है, उस वक्त भी दुरूद शरीफ कर सकते हैं? हाँ भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? गुस्सा आ रहा है सास अम्मा के ऊपर, ठीक है, तो आप उनको बोल भी नहीं सकती कि आप झूठ बोल रहे हैं, जाहिर है सास से बोलेंगे तो फिर आपकी जो सांस का क्या बनेगा, ठीक है, तो बेहतर है कि बस दुरूद शरीफ पढ़े करो उस वक्त, ठीक है, या अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे, अल्लाह उनको तौफीक अता फरमा दीजिए कि तौबा कर लें, ठीक है। हाँ, गुस्सा आ रहा है तो पुलिस जरूर, क्यों नहीं, इस तरह। चले, आपने सवाल पूछ लिया, ठीक है। अच्छा, एक और बात इसके अंदर, ये हमें यानी पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारे लोग जो है ना, जो इस दुनिया में पैदा होते हैं ना, तो उनमें अल्लाह ताला ने बायोलॉजिकली तबीयी तौर पर जो उनका बायां साइड होता है ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड, उसके अंदर ज्यादा पावर रखी होती है, ठीक है ना, ज्यादा ताकत रखी होती है, और राइट साइड के अंदर कम ताकत रखी होती है। ये लोग मेजोरिटी में नहीं होते, लेकिन माइनॉरिटी में तो ये होते हैं, और अच्छी खासी बड़ी माइनॉरिटी होती है, ठीक है। बल्कि हमारे खानदान में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी वाले साहब भी जो है वो लेफ्टी हैं, और जो है वो हमारे बेटे साहब भी लेफ्टी हैं, और शायद तीन में से जो है ना वो कम से कम एक बेटी तो वो भी लेफ्टी हैं, तो अच्छी खासी जो है ना वो माशाल्लाह आप भी हैं, तो ठीक है। तो बहुत सारे लोग लेफ्टी होते हैं, मेजोरिटी नहीं होती लेकिन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों के साथ क्या किया जाए कि इनको जो है वो, कुछ लोग हमने देखा नाउज बिल्ला वो मार मार करके जो है ना, या जलील कर करके जो है ना वो उनसे फिर उनको राइट ही बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो भाई अब ऐसा भी नहीं है कि आप उनको जो है ना वो जलील और रुसवा करके और मारपीट करके जो है वो यानी सुन्नत पे अमल करवाने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन कम से कम चंद चीजों में जो है ना वो आप बार बार याद कराने से, याद दहानी कराने से आदत बना सकते हैं, और ये ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर पावर की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। एक नेचर तो होती है कि जी उन्होंने लेफ्ट हैंड ही बढ़ाना है, पानी पीने के लिए लेफ्ट हैंड बढ़ाना है, जो चीज लेने के लिए लेफ्ट हैंड बढ़ाना है, ये नेचुरली उनका होता है, लेकिन अगर उनके जहन के अंदर एक चीज आ जाए ना कि वो राइट हैंड से खाना खा लें, राइट हैंड से जो है वो कपड़ा पहन लें, तो ये पावर का मसला नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसको ओवरराइड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वालदैन को क्या करना होता है, सुकून इत्मीनान के साथ और नरमी के साथ बार बार याद दहानी कराना, याद दहानियां, ठीक है, याद दहानियां कराने से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बच्चों में देखा, उन्होंने राइट हैंड से खाना शुरू कर दिया, और राइट हैंड से जो है वो जो चंद बुनियादी चीजें होती हैं वो करनी शुरू कर दी, बाकी चीजों में हमने उनको रिलैक्स कर दिया, ठीक है ना, कि भाई ठीक है आप लेफ्टी हैं तो आपको जो है ना वो राइटिंग के लिए अच्छी खासी पावर की जरूरत होती है, ठीक है ना, जब भी जो है ना वो आप जरा ज्यादा लिख लें ना, हाथ में दर्द हो जाता है, मेरे तो कम से कम हो जाता है, और खास कंप्यूटर में जब से आए तो वो कंप्यूटर में टाइपिंग करने के बाद जो है वो पेन से वास्ता भी जो है वो कम पड़ गया। तो बहरहाल पहले भी ऐसे ही होता था, जब कंप्यूटर नहीं हमारी जिंदगी में था, हमने जो है वो यानी इंटरमीडिएट के बाद कंप्यूटर पे काम करना शुरू किया है, तो स्कूल के अंदर लिख लिख रहे हैं जी, नोट्स लिख रहे हैं, और जो है वो इम्तिहान के अंदर पेपर स्याह कर रहे हैं, तो हाथ में बहुत दर्द हो जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि राइटिंग जो है ना वो पावर चाहती है, ठीक है, तो अगर वो राइट हैंड से लिख नहीं पा रहे हैं तो भाई उनके पीछे मत पड़े, छोड़ दें, रहने दें, ठीक है ना, कुछ बरकतें जो है वो किसी और तरीके से भी हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन खाने खाने की हद तक और इस तरह की चंद और जिनमें पावर की जरूरत नहीं है, उसके लिए जो है वो राइट हैंड की आदत बनाई जा सकती है। हाँ, कोई बड़ी उम्र के किसी शख्स को देखें तो भाई प्लीज उनके उनके साथ जो है ना वो पंगा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस उनकी जिंदगी गुजर गई, जैसी गुजर गई सो गुजर गई, अल्लाह ताला उनकी जो भी है अल्लाह ताला माफ कर पाए। ठीक है, बच्चों के साथ लेकिन ऐसा काम किया जा सकता है। और दूसरी एक और आखिरी बात ये कि बच्चों की बाथरूम हैबिट्स जो होती है ना, तो उनके बारे में भी थोड़ा वालिदैन को रहना चाहिए, कॉन्शियस रहना चाहिए। ठीक है, देखें शुरू में तो जो छोटा बच्चा होता है, बच्ची होती है, तो वालिदैन उनको खुद जो है वो टॉयलेट में उनके साथ जा रहे होते हैं, उनको करवा रहे होते हैं, धुला रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। ठीक है, तो उस वक्त तक तो आप बाथरूम देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है अंदर, सही है। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप उनको पॉटी ट्रेन कर देते हैं, बाथरूम की ट्रेनिंग हासिल हो जाती है, तो उसके बाद जो है ना वो उनके साथ बाथरूम जाने का सिलसिला जो है वो बंद होता है, और ऐसा बंद होता है कि फिर वो सारी जिंदगी बंद ही रहता है, इल्ला ये कि कोई बहुत ही जो है ना वो कोई क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो जाए, कोई नाउज बिल्ला कोई मसला पैदा हो जाए, तब जो है वो शायद पेरेंट्स में से किसी को जो है वो बाथरूम में जाकर देखना पड़ेगा भाई क्या हो रहा है। लेकिन वो भी एक खास क्रिटिकल सिचुएशन ही के तहत होगा ना, तो वहां पे जरा सा बच्चों से फिर खुद एक पूछ लिया करें, जब जब वो छोटी उम्र के हैं, लेकिन इतने छोटे नहीं है कि आप उनके साथ बाथरूम जा रहे हैं, ठीक है, इतने बड़े हो गए हैं कि अब जो है ना वो ऑन देयर ओन, ठीक है, तो जरा सा चेक कर लें कि वहां अभी भी कोई उल्टा मामला तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आपने तो कोशिश करके समझ लिया था कि जी मैंने वो राइट लेफ्ट हैंड का जो है ना मसला हल कर लिया है, लेकिन चूंकि वो है लेफ्टी तो कल को जो है ना वो नेचुरली जो है ना उन्होंने स्विच कर लिया, वापस स्विच कर लिया, ठीक है ना, अब जो है वो नाउजुबिल्ला मतलब जो नजासत वाला काम है वो सीधे हाथ से करना शुरू हो गए, ठीक है ना, और जो है वो तहारत वाला काम जो है वो उल्टे हाथ से करना शुरू हो गए, क्योंकि उनके यानी बाय नेचर उनकी उनकी बायोलॉजी में ऐसे ही था, फिजिक में ऐसे ही था, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना वो इन चीजों को जरा सा कुछ एज तक 10-11 साल तक की उम्र तक जो है वो बच्चों के साथ रिपीट भी करते रहना चाहिए, ठीक है ना, यानी तकरार, इन चीजों की तकरार, ठीक है ना, क्योंकि फिर इस एज से जब और ज्यादा बड़े हो जाएंगे ना, तो फिर उसके बाद यानी बात भी नहीं हो सकेगी इस इन टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 65। और 66 पॉइंट जो है वो हम शुरू करें, या क्लास का इस वाली क्लास का टाइम खत्म हो गया, तो 66 इंशाल्लाह अगली क्लास के में पढ़ेंगे, यहाँ से लेकर के फिर अब 78 कितनी क्लासेस लगेंगे इसमें, चलें अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें, तो चंद मिनट की ब्रेक के बाद फिर हम दूसरी क्लास शुरू करते हैं मिसाली बीवी वाली।